डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट यशायाह 17:4 यशायाह 6 2024 जॉन ओसवाल्ट और टेड हिल्डेब्रांट। यह यशायाह की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट हैं। यह सत्र संख्या 4 यशायाह अध्याय 6 है। स्वागत, आपसे दोबारा मिलना अच्छा लगा। सोमवार की रात है इसलिए बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी आप आ गए। अच्छा, धन्यवाद। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रिय पिता, हम आपके बीच में आपकी उपस्थिति से खुश हैं। धन्यवाद कि आप यहाँ हैं। आपका धन्यवाद कि आपने अपने आप को हमें सौंप दिया। धन्यवाद कि आपने हमें अपनी उपस्थिति में आमंत्रित किया। धन्यवाद कि आप हमारे द्वारा जाना जाना चाहते हैं। आप अपने अतिक्रमण के रहस्य में छिपना नहीं चाहते, आप जाना जाना चाहते हैं। और इसलिए भगवान, हम कहेंगे कि हम आपको जानना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से फिर से हमारे लिए धर्म ग्रंथ खोलेंगे। आप जो कुछ भी हमें बताते हैं उसे समझने, अपनाने, लागू करने, जीने में हमारी मदद करें। आपके नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, तथास्तु। खैर, आज रात हमारे पास एक अध्याय की सुविधा है, लेकिन यह एक ऐसा अध्याय है जो पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। मैं हमेशा अपने छात्रों से कहता हूँ, इस अध्याय में कोई अनावश्यक शब्द नहीं है। वस्तुतः हर शब्द महत्वपूर्ण है, यहां तक कि एंड और थू भी महत्वपूर्ण हैं। और इसलिए मुझे यकीन है कि हमारे पास जो भी समय है हम उसमें बिताएंगे। मैं कहता रहा हूं कि अध्याय 1 से 5 में विद्रोही, अहंकारी, मानवीय महानता के प्रति चिंतित कड़वे अंगूरों के बाग वाले इसराइल के बीच आगे और पीछे हमारा यह आदान प्रदान है, जैसा कि हमने पिछले सप्ताह देखा था। यही तो इसराइल है। और फिर भी उन चित्रों के बीच हम इसे अध्याय 1 में आंशिक रूप से देखते हैं, फिर हम इसे अध्याय 2:6-4:1 में देखते हैं, हम इसे अध्याय 5:1-30 में फिर से देखते हैं, 2:1-30 में इसे बदल दिया गया है, 5 और 4:2-6 में एक बहुत अलग तस्वीर है, एक शुद्ध और पवित्र इसराइल की तस्वीर जिसमें सभी राष्ट्र परमेश्वर का मार्ग सीखने के लिए आ रहे हैं। और इसलिए जैसे ही हम अध्याय 5 के अंत में आते हैं, हमारे सामने एक प्रश्न आता है, दुनिया में यह वर्तमान इसराइल कभी वैसा इसराइल कैसे बन सकता है? इसमें क्या लगने वाला है? अब हमारे पास कुछ संकेत हैं, विशेष रूप से अध्याय 4 में आग की हवा, न्याय की हवा, लेकिन और कुछ नहीं। मेरा मानना है कि अध्याय 6 में यशायाह इस समस्या के समाधान के रूप में अपना अनुभव प्रस्तुत करता है। मेरा मानना है कि इसीलिए वह हमें अपनी कॉल की कहानी बताने के लिए 5 अध्यायों का इंतजार करता है। तो यह कोई कालानुक्रमिक क्रम नहीं है, यह एक धार्मिक क्रम है। और मैं चाहता हूं कि हम आज शाम यही देखें, यशायाह के अनुभव की प्रकृति और वह अनुभव राष्ट्र से कैसे संबंधित है। इनमें से अधिकांश पाठों में पृष्ठभूमि का एक बड़ा हिस्सा होगा, क्योंकि भविष्यवक्ताओं को समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि वे किस स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। स्मरण रहे कि सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका राज्य 2 भागों में टूट गया। उत्तरी भाग, जो उत्तरी 10 जनजातियां हैं, ने इसराइल नाम लिया। और जब आप पुराना नियम पढ़ रहे हो तो आपको हमेशा इसे सुलझाना होगा। क्या हम इसराइल समग्र राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं, या क्या हम इसराइल राज्य के बारे में बात कर रहे हैं जो 930 और 722 के बीच उत्तरी 10 जनजातियां हैं? सुलेमान की मृत्यु चाहे 10 साल हो या न हो 930 में हुई और तभी राज्य विभाजित हो गया। दो राज्य एक साथ अस्तित्व में थे, इसराइल का उत्तरी राज्य और यहूदा का दक्षिणी राज्य लगभग 200 वर्षों तक, जब तक कि उत्तरी राज्य की राजधानी सामरिया 722 में नष्ट नहीं हो गई। तब यहूदा दक्षिणी राज्य मूल रूप से क्षेत्र था यहूदा के उस दक्षिणी गोत्र का, परंतु तुम्हें स्मरण है कि शिमोन के गोत्र का क्षेत्र यहूदा के भीतर था। तो आपके पास यहूदा है, कुछ कुछ ऐसा ही है, और यहाँ इसके बीच में शिमोन है। तो वहाँ दो जनजातियां हैं। वे 930 से 586 तक अस्तित्व में रहे, जब बेबीलोनियों ने यरूशलेम को नष्ट कर दिया। अब बीच के वर्षों में यहूदी अपनी उत्तरी सीमा को बिन्यामीन के क्षेत्र तक बढ़ाने में सक्षम हो गए। तो वास्तव में यहूदा इस अवधि के अंत में, जब दोनों राज्य अभी भी अस्तित्व में थे, यहूदा में वास्तव में 3 जनजातियां या 2.5 जनजातियां शामिल थीं और उत्तरी राज्य लगभग 9.5 जनजातियां थीं। तो यही वह स्थिति है जब यशायाह लिखना शुरू करता है। वह लिखना शुरू करता है उस तारीख के अनुसार जिसे हम यहाँ एक पल में देखने जा रहे हैं, 739 में, यानी उत्तरी साम्राज्य के पतन से 17 वर्ष पहले, हर तरह से अराजकता के वर्ष। उत्तरी साम्राज्य, और बेहतर होगा कि मैं यहाँ अपने प्रसिद्ध मानचित्रों में से एक बनाऊं। उत्तरी साम्राज्य अब तक दोनों में से अधिक समृद्ध और अधिक शक्तिशाली था। यहूदा का क्षेत्र भी कुछ ऐसा ही था, इसराइल वह था। और यहाँ मुख्य मुद्दों में से एक वह महान राजमार्ग था जो मेसोपोटामिया से मिस्र तक जाता था और इसराइल से होकर आता था। यह यहूदा से होकर नहीं गया। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, इसराइल के पास अधिक कृषि भूमि है। यहूदा मूलतः केवल अंगूर उगाने के लिए ही अच्छा था। उनके पास व्यापारिक संपत्ति अधिक थी, उनके पास अधिक सैन्य शक्ति थी। यहूदा हर तरह से कमजोर बहन थी, लेकिन इसराइल सबसे पहले गिरने वाला देश था। और बाइबल में इसराइल को शुरू से ही धर्मत्यागी के रूप में दर्शाया गया है। आरंभ में ही पहले राजा यारोबाम ने बेतेल में, सभी स्थानों में और यहाँ दान में सोने के बैल स्थापित किए। अब विद्वानों, मुझे थोड़ा सावधान रहना होगा कि मैं ज्यादा व्यंग्यात्मक न हो जाऊं। जिन विद्वानों को बाइबल बहुत अच्छी नहीं लगती, वे कहते हैं, ठीक है, यह सच नहीं हो सकता, यह स्पष्ट रूप से यहूदी दृष्टिकोण से लिखा गया इतिहास है और सभी यहूदी सभी इसराइलियों से नफरत करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि उन 200 वर्षों में एक भी अच्छा राजा नहीं था। यहूदा ने बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। 350 वर्षों में यहूदा में 5 अच्छे राजा हुए और उनमें से कुछ अच्छे के रेजर ब्लेड किनारे पर हैं। लेकिन कम से कम यहूदा ने इन उल्लेखनीय पुनरुत्थानों का अनुभव किया जो उन्हें कुछ समय के लिए वापस ले आए, इससे पहले कि वे फिर से पुराने मूर्ति पूजक धर्मत्याग में पड़ गए। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वासियों का एक समूह बनाए रखने के लिए यह पर्याप्त था। तो ये है स्थिति। 745 में असीरियन लगभग 50 या 60 वर्षों की शांति से जाग रहे हैं और वे फिर से सड़क पर हैं और वे इस राजमार्ग से नीचे आ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण राजमार्ग है जो यहां से दमिश्क की ओर आता है और इसलिए वे इस राजमार्ग पर भी आ रहे हैं। तो यह स्थिति है और यह बहुत डरावनी है। इसलिए यशायाह का मंत्रालय दो राज्यों के अंतिम वर्षों में शुरू होता है और फिर प्रारंभिक वर्षों तक चलता है, जब सामरिया के पतन के बाद यहूदा अकेला हो जाता है और इसराइल को साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है राजा, ठीक है, मुझे वापस आना चाहिए, क्षमा करें। मैंने कहा कि लगभग 50 वर्ष, लगभग 55 वर्ष, लगभग 800 से 745 तक, जब अश्शूर के लगातार दो कमजोर राजा थे, और अश्शूर पीछे हट गया। मैंने पहले कहा है, मुझे लगता है कि योना का इससे कुछ लेना देना था। फिट बैठता है। लेकिन कारण जो भी हो, हे भगवान, अश्शूरियों के विरुद्ध 100 वर्षों के संघर्ष के बाद आपके पास लगभग 55 वर्ष थे। और इस प्रकार तुम्हारे उत्तर में एक राजा है, दूसरा पुरुष जिसका नाम यारोबाम है। उत्तर के पहले राजा का नाम यारोबाम था। इस आदमी का नाम भी यारोबाम है। जैसा कि मैंने वर्षों पहले एक बार इस बारे में बात करते हुए कहा था, यारोबाम दंत नहीं, यारोबाम दूसरा। वह इसराइल का राजा है और उज्जियाह यहूदा का राजा है। इन दोनों का शासनकाल बहुत लंबा है। यारोबाम का राज्य लगभग 46 या 47 वर्ष तक रहा। उज्जियाह का राज्य 52 वर्ष का हुआ। और यह दबाव से मुक्ति का स्वर्णिम युग है। दोनों राज्य नवीकरण का अनुभव कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने 100 वर्षों से इसका अनुभव नहीं किया था। सब कुछ अद्भुत है, लेकिन उत्तर में दो पुराने बदमाश हैं। एक का नाम आमोस और दूसरे का नाम होशे रखा गया। और वे कहते हैं, नहीं, यह स्वर्ण युग नहीं है, यह लाइलाज बीमारी का आखिरी दौर है। 50 साल के अंदर इस देश का अस्तित्व नहीं रहेगा। आप समझ सकते हैं कि उन लोगों ने कोई लोकप्रियता पुरस्कार नहीं जीता। कल्पना कीजिए कि आज कोई यह कहने का साहस कर रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका 50 वर्षों के भीतर मानचित्र से मिटा दिया जाएगा। मैं न तो पैगंबर हूं और न ही पैगंबर का बेटा हूं। लेकिन यह बिल्कुल भी असंभव नहीं है। आप इतने लंबे समय तक केवल भगवान पर अंगूठा ही लगा सकते हैं। तो वे लोग कह रहे थे, तुम्हें लगता है कि सब कुछ अद्भुत है। अरे नहीं, 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 यह शीघ्र ही बदलने वाला है। और जैसा कि मैंने बार बार कहा है, 745 में यह बदल गया। आपको सिंहासन पर एक नया सम्राट मिला, तिगलात पिलेसर III, जिसने कहा, मैं मिस्र जा रहा हूं। तो यह उस स्थिति में है कि यशायाह का मंत्रालय सामने आता है। अब मैं अध्याय 6 के लिए हमें तैयार करने के लिए यह सब कह रहा हूं। जिस वर्ष राजा उज्जियाह की मृत्यु हुई, मैंने प्रभु को देखा। इस पुस्तक में बहुत बहुत कम तारीखें हैं, इसलिए जब भी आप किसी को देखें तो आपको यह जानना होगा कि वह किसी कारण से वहां है। यशायाह ने इसे सिर्फ लात मारने के लिए नहीं फेंका था। तो आपको क्या लगता है कि उसने इसे क्यों डाला? इसका क्या महत्व है? खैर, निश्चित रूप से उनके अनुभव का ऐतिहासिक सत्यापन। ठीक है, उनके अनुभव का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सत्यापन। हाँ, वह यह जरूर कह रहे हैं, यह एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान पर हुआ था। शायद वह जेब था, उज्जियाह, और यह यशायाह की सोच की एक मूर्ति भी थी। ठीक है, ठीक है। वह उज्जियाह यहूदा राष्ट्र के लिए आदर्श बन गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि यारोबाम में उज्जियाह एक उत्कृष्ट प्रशासक और सैन्य नेता था। लेकिन बाइबल उसे थोड़ा सा शब्द देती है, क्योंकि वह कहती है कि वह एक बुरा आदमी था। उज्जियाह को हां और ना में दर्शाया गया है। अच्छा आदमी, आस्तिक, एक सक्षम प्रशासक, प्रतिभाशाली सैन्य नेता। लेकिन लगभग 750 में उन्होंने निर्णय लिया कि वह भी एक महायाजक थे। मंदिर में गए और पुजारी कह रहे थे, नहीं, नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और आहुति दी और कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। इसलिए बाइबल उसके बारे में एक तरह से अस्पष्ट है। यह वास्तव में उस तरह का निर्णय नहीं देता जैसा कि यह सभी उत्तरी राजाओं और अधिकांश यहूदी राजाओं पर देता है। लेकिन फिर भी समस्या तो है। उसके बाद उसे महल तक ही सीमित कर दिया गया और उसका बेटा जोथम सबसे आगे था। लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट था कि उज्जियाह ही शो चला रहा था। तो यह अब 739 है। 6 वर्षों से असीरियन रथ का पतन हो रहा है। लेकिन हे, जब तक अच्छा बूढ़ा उज्जियाह सिंहासन पर है, हम इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज लेंगे। जिस वर्ष राजा उज्जियाह की मृत्यु हुई, मैंने प्रभु को देखा, जब अचानक उनके नीचे से गलीचा खींच लिया जाता है और जिस मानवीय नेतृत्व पर वे निर्भर थे वह छीन लिया गया है। यह ऐसा है मानो आपको यह विशाल विशाल ओक मिल गया हो और आप इसके नीचे आराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और अचानक एक तेज हवा आती है और उस चीज को जड़ से उखाड़ देती है और अब आप आकाश देख सकते हैं और आकाश काले उबलते बादलों से भर गया है। जिस वर्ष राजा उज्जियाह की मृत्यु हुई, मैंने प्रभु को देखा। मैं यह कहानी पहले भी बता चुका हूं, लेकिन इसने मुझ पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला। जब मैं 10 साल का था तो मेरे पिता ने मेरी माँ को टेलर यूनिवर्सिटी ले जाने के लिए मैंसफील्ड, ओहियो से अपलैंड, इंडियाना की एक त्वरित यात्रा की, जहाँ मेरी बहन को संक्रामक हेपेटाइटिस का पता चला था और वह दाहिनी ओर घूमकर वापस आ गया। 1950 में कोई अंतर्राज्यीय नहीं थे। उसके पास दूध देने के लिए गायें और खिलाने के लिए मुर्गियां थीं। और जैसे ही वह मैंसफील्ड की ओर वापस आया, मटर सूप का कोहरा आ गया। लेकिन जैसा कि उसने बाद में बताया, मुझे लगा कि यह कोई समस्या नहीं थी। मैं बस मध्य रेखा पर चला जाऊंगा और आगे बढ़ता रहूंगा, सिवाय इसके कि मध्य रेखा पर एक पुल के सहारे एक रेलमार्ग ओवरपास था। आखिरी वक्त में उन्होंने इसे देखा। हमारा अनुमान है कि उसे इसकी कोई स्मृति नहीं है, इसकी कोई स्मृति नहीं है। जाहिरा तौर पर वह मुड़ गया और कार का पिछला हिस्सा टक्कर से टकरा गया। कोई सीट बेल्ट नहीं। सामने का दरवाजा खुल गया। उसे बाहर निकाल दिया गया। और जैसे ही वह बाहर गया, अंदर लगे क्रोम दरवाजे के हैंडल ने उसकी जांघ को पकड़ लिया और उसे खोल दिया। उसके ठीक पीछे एक बस थी और वह रुक नहीं सका, परंतु वह मुड़ गया और दूसरी ओर से चला गया। सौभाग्य से कोई कार नहीं आ रही थी और फिर रुक गया और वे मेरे पिता को, जो हीमोफीलिया से पीड़ित थे, अस्पताल ले गए और मूल रूप से उन्हें 4 पिंट रक्त दिया। उसकी कमर टूट गई थी और अगले 6 सप्ताह उन्होंने अस्पताल में बिताए और फिर अपनी पीठ पर पट्टी बांधकर कई महीने बिताने के लिए घर आ गया। मेरे पिता ईसाई थे, लेकिन हर भोजन के समय उनकी प्रार्थना बिल्कुल एक जैसी होती थी। उस शनिवार को जब वह अस्पताल से घर आया तो उसने एक अलग प्रार्थना की और उन्होंने जो बातें कहीं, उनमें से एक यह थी कि मुझे यह दिखाने के लिए धन्यवाद कि कौन सी चीजें मायने रखती हैं और कौन सी चीजें मायने नहीं रखती। जिस वर्ष राजा उज्जियाह की मृत्यु हुई, मैंने प्रभु को देखा। ठीक है, अब सिंहासन पर बैठना क्या दर्शाता है? चीजों पर नियंत्रण। सिंहासन पर कौन बैठता है? राजा। और अब नीचे देखो, ध्यान दें कि वह पद 5 में क्या कहता है, मेरी आंखों ने राजा को देखा है। जिस वर्ष राजा की मृत्यु हुई, मैंने राजा को देखा। मैं आपको सुझाव दूंगा कि जब तक राजा की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक हमारे जीवन में वास्तविक पवित्रीकरण नहीं हो सकता, चाहे वह राजा आंतरिक हो या बाहरी या कुछ भी। उस बिंदु पर आना होगा जहां हम अपनी आवश्यकता की हताश प्रकृति को पहचानेंगे। निस्संदेह इन दिनों दृढ़ विश्वास के लिए उपदेश देना बहुत ही अलोकप्रिय है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे विश्वास है कि गहरी प्रतिबद्धता के बिना हमें व्यक्तिगत पवित्रता की कोई आवश्यकता नहीं दिखेगी। जब तक हम अपनी क्षमता, अपनी संभावनाओं के अंत तक नहीं पहुंच जाते। और फिर हमारी इस अच्छी भूमि ने हमें दुहक पहुंचाया है। परमेश्वर जानता है कि जब वह लोगों से कहता है, अब जब तुम इस देश में आओगे, जहां तुम ऐसे मकानों में रहते हो जो तुमने नहीं बनाए, जहां तुम उन दाख की बारियों में से खाते हो जो तुमने नहीं लगाई, जहां तुम उन बागों से फल तोड़ते हो जो तुमने नहीं लगाए थे, तो मुझे मत भूलना। भगवान की जरूरत किसे है? ऊंचा और उठा हुआ इस पुस्तक में एक महत्वपूर्ण वाक्यांश है। सबसे पहले अध्याय 57:14 को देखें। वास्तव में हम 14 से शुरू करेंगे। मैं जो चाहता हूं वह 15 है। यह कहा जाएगा, निर्माण करो, रास्ता तैयार करो, मेरे लोगों के रास्ते से हर बाधा को हटाओ। क्योंकि वह जो ऊंचा और ऊंचे स्थान पर है, जो अनंत काल तक वास करता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यही कहता है, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में और उसके साथ भी निवास करता हूं जो खेदित और दीन आत्मा का है। तो यहां दूसरा स्थान है जहां ऊंचा और ऊंचा किया हुआ भगवान को लगाया जाता है। अब जैसा कि मैंने यहां अध्ययन मार्गदर्शिका में कहा है, यह संभव है कि ऊंचा और ऊंचा होना सिंहासन को संदर्भित करता है, लेकिन फिर भी यह वह सिंहासन है जिस पर भगवान बैठे हैं। ठीक है, अब अध्याय 52:13 को देखें। कृपया कोई इसे जोर से पढ़े। देख, मेरा दास बुद्धिमानी से काम करेगा। वह महान और महिमामंडित किया जाएगा और बहुत ऊंचा होगा। यह वही वाक्यांश है जो यहां मसीहा पर लागू होता है। वह ऊंचा और ऊंचा किया जाएगा। मैं कुछ महीनों में उस पर वापस आऊंगा। लेकिन हमें यह पूछना होगा कि हम यहां जिस नौकर की बात कर रहे हैं वह कौन है। पुस्तक में 3 स्थान ऊंचे और ऊंचे दिखाई देते हैं। उनमें से 2 स्पष्ट रूप से भगवान का जिक्र कर रहे थे और दूसरा नौकर की ओर इशारा कर रहा था। मुझे लगता है कि यह कुछ महत्वपूर्ण बात कहता है। ठीक है, अध्याय 6 पर वापस आते हैं। हम अभी भी पद 1 में हैं। और उसके बागे का आंचल मंदिर में भर गया। भगवान कितना बड़ा था? उनका दामन 75 फीट ऊंचा है। मंदिर इतना ऊंचा था। अब इस अध्याय में ईश्वर का यही एकमात्र वर्णन है। निर्गमन पर वापस जाए। हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। निर्गमन अध्याय 24। हमें बताया गया है कि बुजुर्गों ने भगवान के साथ भोजन किया और उन्हें देखा। पद 10 2410। उन्होंने इसराइल के परमेश्वर को देखा। उसके पैरों के नीचे मानो नीलेपन के लिए स्वर्ग जैसा नीलमणि पत्थर का फुटपाथ था। इतना ही, कोई अन्य विवरण नहीं। मैं यशायाह को मंदिर से बाहर तैरते हुए देखता हूं। कोई कहता है, तुम्हें क्या हो गया? मैंने भगवान को देखा। अरे हाँ, वह किसकी तरह दिखता था? तुम्हें उसके बागे का किनारा देखना चाहिए था। अच्छा, उसका लबादा कैसा दिखता था? तुम्हें वह हेम देखना चाहिए था। उसके पैर कैसे दिखते थे? तुम्हें वह हेम देखना चाहिए था। शब्द केवल इतनी ऊंचाई तक, फुटपाथ तक ही पहुंच सकते हैं और तब वे बेकार हो जाते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि सुसमाचारों में यीशु का एक भी भौतिक वर्णन नहीं है। हम मनुष्य कट्टर मूर्ति पूजक हैं। यीशु सुलेमान के सिर जैसा नहीं दिखता था। ईश्वर वर्णन से परे और हमारे नियंत्रण से परे हैं। 6:2 उसके ऊपर खड़ा था, जैसा कि मैंने नोट में कहा है, शायद सेराफिम का मतलब जलती हुई है। ये शायद भगवान के सिंहासन के चारों ओर घूमती लपटे हैं। प्रत्येक के छह पंख थे, दो से उसने अपना चेहरा ढका, दो से उसने अपने पैर ढके और दो से वह उड़ गया। अब वे अपना चेहरा और पैर क्यों ढक रहे हैं? अपनी स्वयं की नीचता को स्वीकार करना। परमपावन, उसके ज्वलंत नौकर उस पर नजर नहीं डाल सकते, और फिर भी हम भगवान के सिंहासन कक्ष में भागते हैं और कहते हैं, पुराने दोस्त तुम कैसे हो, आज मुझसे कोई मदद चाहिए। दो से उन्होंने अपने पैर ढक लिए। इस बारे में आपको टिप्पणियों में बहुत सारे तर्क मिल सकते हैं, लेकिन मेरे सहित अधिकांश लोगों का मानना है कि पैर शरीर का प्रतीक हैं। न केवल मैं भगवान को आमने सामने नहीं देखना चाहता, बल्कि मैं यह भी नहीं चाहता कि भगवान अपनी सूर्य की रोशनी को इस गरीब नश्वर शरीर पर केंद्रित करें। तो फिर दो अलग अलग तरीकों से भगवान की अद्भुत पारलौकिक पवित्रता पर जोर दिया गया, और दो के साथ वे उसकी सेवा करने के लिए उड़ गए। इस तीसरे श्लोक एक प्रसिद्ध कथन में दो बातें कही गई हैं। पहला, जैसा कि मैंने नोट में फिर से उल्लेख किया है, अतिशयोक्तिपूर्ण है। स्वर्ग की सेनाओं का यहोवा परम पवित्र है। पवित्र? हाँ, पवित्र, हाँ, ओह, उसके जैसा पवित्र कोई नहीं है। हर बार जब आप मुझे सुनेंगे तो मैं यही कहूंगा। पवित्र का मूलतः अर्थ अन्य है, लेकिन पुराना नियम हमें बताता है कि ब्रह्मांड में केवल एक ही प्राणी है जो अन्य है, यहोवा निर्माता, और इसलिए उसका चरित्र यह निर्धारित करता है कि एक पवित्र चरित्र कैसा दिखता है। तो यह महज पारलौकिक सार का कथन नहीं है, यह उत्कृष्ट चरित्र का कथन भी है। दूसरे कथन का क्या मतलब है? सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण है। जो कुछ भी अच्छा है वह उसे प्रतिबिंबित करता है। और क्या? ठीक है, यहां जो कुछ भी है वह उसी का प्रतिबिंब है और कुछ नहीं। और क्या? परमेश्वर अपनी महिमा बांटना चाहता है। हाँ, वह इस ब्रह्मांड में अपनी महिमा रखता है। वह इसे रोकता नहीं है और कहता है, हाँ, वह चीज, वह एक धुंधला प्रतिबिंब है। नहीं, जैसा कि मैंने नोट में कहा है, यह ब्रह्मांड अपनी वास्तविकता, अपना महत्व, अपनी दृढ़ता साझा करता है। हिब्रू में महिमा का यही अर्थ है। यह कोई लुप्त होने वाली चमक नहीं है, यह वास्तविकता है। परमेश्वर की महिमा में दौड़ना एक ईंट की दीवार में दौड़ने के समान है, और भगवान ने उसे अपनी रचना में रखा है और वह इसे हमारे साथ साझा करना चाहता है। तो यह एक गहरा बयान है। एकमात्र उत्कृष्ट व्यक्ति स्वर्ग की सेनाओं के यहोवा हैं, और पृथ्वी अपने अस्तित्व में उसकी महिमा को प्रतिबिंबित करती है, और कोई नहीं और कुछ भी नहीं। समावेशिता के इस दिन में यह एक अत्यंत विशिष्ट कथन है ना? हाँ, हाँ। तो पद चार के अनुसार सेराफिम की आवाज कितनी तेज थी, इससे इमारत की नींव तक हिल गई। डेसिबल के बारे में बात करें, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। दहलीज और दरवाजों की बुनियादें हिल गईं। और आगे क्या होगा? हाँ, यह दृष्टि कहती है कि पंख हिल गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिनियन क्या हैं, बहुत सारे पिन हैं। हाँ, पिन, हाँ, और आगे क्या होगा? घर में धुआं भर गया, उसका क्या प्रभाव है? भावना का स्वर क्या है? उस वाक्यांश में कौन सा भावनात्मक स्वर है? पलायन के दौरान धुएं के स्तंभ की तरह, चाहे धुआं हो चाहे आग हो, ठीक है, धूप की तरह। मान लीजिए कि यह कमरा धीरे धीरे धुएं से भरने लगा, आपको कैसा महसूस होगा? डरा हुआ, मुझे आराम रहेगा, रहस्य और विस्मय की भावना। एक अर्थ यह है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है, हाँ हाँ, हम ईश्वर की वास्तविकता को शब्दों में समेट सकते हैं। स्वर्ग की सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण है। हम उसे संज्ञान में ला सकते हैं, लेकिन आखिर में घर धुएं से भर जाता है। यह थोड़ी प्रबंधनीय अवधारणा या अवधारणाओं का समूह नहीं है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। कैथेड्रल के निर्माता यही बताने की कोशिश कर रहे थे, और इसीलिए व्यक्तिगत रूप से मुझे सभागार में भगवान की पूजा करने में थोड़ी कठिनाई होती है। विस्मय, रहस्य, आश्चर्य अब मेरे अच्छे दोस्त हैं जो कहेंगे, हाँ, वह सारी चर्च वास्तुकला वास्तव में पूजा की भावना को महसूस करने के रास्ते में आती है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ मुद्दा यह है कि जब यह सब खत्म हो जाता है तो यह एक ऐसा रहस्य है जिसे भुलाया नहीं जा सकता है या इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। अब यशायाह बहुत मजबूत तरीके से प्रतिक्रिया करता है। आपको क्या लगता है वह ऐसा क्यों करता है? मुझे वहां पीछे की पंक्तियों से सुनना है। मैं जानता हूं कि आप मुझे यहां मुश्किल से ही देख पाएंगे। हाँ, वह अशुद्ध क्यों महसूस करता है? परमेश्वर ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा या सेराफिम ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। उसमें अस्वच्छता का वह भाव क्यों है? क्योंकि वह यहूदी है। उनके और भगवान के बीच बहुत बड़ा विरोधाभास है। वह पहला दिन याद है जब यीशु पतरस से मिले थे, और पीटर की नाव को मंच के रूप में उपयोग करने के बाद उसने कहा, ठीक है पीटर, चलो मछली पकड़ने चलते हैं। फिर मुझे आशा है कि इनमें से कुछ पर तत्काल रिप्ले होंगे। मुझे इसे देखना है। मैं पतरस को यह कहते हुए देखना चाहता हूँ, देखो तुम उपदेश के बारे में जानते हो, मैं मछली पकड़ने के बारे में जानता हूँ, तुम दिन के समय गलील में मछली मत पकड़ो। वह नंबर एक है। नंबर दो, हमने पूरी रात सिर्फ मछली पकड़ी है और कुछ भी नहीं पकड़ा। फिर भी यदि आप कहते हैं कि मछली पकड़ने जाओ तो हम मछली पकड़ने जाएंगे। याद रखें क्या हुआ था। जाल भर गए। और पतरस ने क्या कहा? किस कारण से मुझसे दूर हो जाओ? मैं एक पापी हूं। यीशु ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन जब हम मनुष्य जीवित ईश्वर के संपर्क में आते हैं तो हमें जो तत्काल पहचान मिलती है वह परिमितता नहीं, नश्वरता नहीं, बल्कि अशुद्धता है। मेरे बारे में कुछ ऐसा है जो आपकी उपस्थिति में मौजूद नहीं रह सकता। अब फिर से, और मुझे किसी भी अन्य उपदेशक की तरह यहाँ भी उतना ही अपराध स्वीकार करना होगा। आखिरी बार आपने क्रोधित भगवान के हाथों पापियों पर उपदेश कब सुना था? पिछली बार कब आपको परमेश्वर की उपस्थिति में इतना लाया गया था कि आपको कहना पड़ा कि मेरे पास से चले जाओ? अपने आप में मैं तुम्हारी उपस्थिति में नहीं रह सकता। जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह कहा था, शोक शब्द अंत्येष्टि का शब्द है। अफसोस, मेरे लिए यह सब खत्म हो गया है, और यह मुझे यहाँ अंग्रेजी मानक संस्करण मिला है। यह कहता है, क्योंकि मैं खो गया हूँ। यदि मुझे ठीक से याद है तो किंग जेम्स कहते हैं, मैं पूर्ववत हो गया हूँ। कुछ अन्य संस्करण कहते हैं कि मैं विघटित हो गया हूँ। और वास्तव में इस शब्द का अर्थ यही है। इसका मतलब पिघलना है। बस खिल जाओ, धूप में मक्खन की थपकी की तरह। मेरी पहचान आपकी पहचान के सामने मौजूद नहीं रह सकती। अब वह यह क्यों नहीं कहता कि मैं अशुद्ध हृदय का आदमी हूं? दिल से निकलता है। यीशु ने ऐसा कहा था। हाँ, यीशु ने हृदय से कहा। मनुष्य हृदय की प्रचुरता से बोलता है। लेकिन मुझे अब भी आश्चर्य है कि होंठ गंदे क्यों होते हैं। क्या वह सभी लोगों से अपनी पहचान नहीं बना रहा है? ओ हाँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं कहूंगा कि मैं अशुद्ध दिल का आदमी हूं और मैं अशुद्ध दिल वाले लोगों के बीच में रहता हूं। आप क्या सोचते हैं? होंठ और जीभ नहीं। हाँ, जेम्स को जीभ मिल सकती है। हाँ, यदि वह एक भविष्यवक्ता है तो उसका मुख्य काम एक साहित्यिक शब्द का उपयोग करना और फिर उसे मेरी ओर इंगित करना है। ठीक है, मुझे लगता है कि यह बहुत संभव है। मुझे लगता है कि वह पहले से ही, नंबर एक, उसने आग के होठों के माध्यम से इन सेराफिम को ये अद्भुत शब्द बोलते हुए सुना है, और मैं उसे अपने दिल में यह कहते हुए सुन सकता हूँ, काश मैं ऐसा कुछ कर पाता। लेकिन हे भगवान, इस मोह से निकला। मुझे लगता है कि यह एक वास्तविक संभावना है। मुझे लगता है कि दूसरी बात यह है कि आप सब संकेत कर रहे हैं, और वह यह है कि आप अपने साफ दिल के बारे में जो कुछ भी चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आपके जीवन की अभिव्यक्ति वह है जहां रबर सड़क पर आती है। यदि आपके जीवन की अभिव्यक्ति शुद्ध नहीं है तो हम जो कुछ भी कह सकते हैं वह झूठ है। यही हकीकत है। इसलिए मुझे संदेह है कि ये दोनों चीजें यहां चल रही हैं। काश मैं ऐसा कुछ अद्भुत कह पाता, लेकिन मैं नहीं कह सकता। मेरे होंठ, मेरा जीवन गंदा है। हाँ, दोए संस्करण कहता है कि मैंने अपनी शांति बनाए रखी है। यह तो दिलचस्प है। मैं चुप रहा हूं। अगला सवाल, वह इसमें बाकी सभी को शामिल क्यों करता है? क्या यह पर्याप्त नहीं है कि वह अशुद्ध है? वह एक भविष्यवक्ता है। वह बात कर रहा है। यदि आप चाहें तो वह ईश्वर से लोगों तक और लोगों से वापस ईश्वर तक का अनुवादक रहा है। हाँ, निर्गमन के बाद से ही लोगों को बताया गया था कि वे एक चुने हुए लोग थे, थोड़ा पुरोहित वर्ग, और मुझे लगता है कि इसराइल ने कुछ मायनों में लगभग अहंकारी तरीके से ऐसा दावा किया है। और यहाँ आपके सामने ऐसी स्थिति है जहाँ यशाया प्रभु के सामने खड़ा है और देख रहा है कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। वह कह रहा है, यार, ये लोग, तुम्हारे लोग जो वास्तविक है, उसका सच भी नहीं बता सकते।
हाँ,
क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच उन्हें ले जा रहा हो? क्या वह सचमुच उन्हें अपने हृदय में धारण कर रहा है? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लोग आपका दिल नहीं देख सकते, लेकिन आप जो कहते हैं वह सुन सकते हैं। वे आपका दिल नहीं देख सकते, लेकिन आप जो कहते हैं वह सुन सकते हैं।
हाँ,
मुझे लगता है कि इन सभी में वास्तविक संभावनाएं हैं। केवल एक चीज जो मैं जोड़ना चाहूंगा वह यह है कि वह कह रहा है, यह सिर्फ मैं ही नहीं हूं जो अस्तव्यस्त जीवन का एक उदाहरण है। मैं पूरी तरह से अस्तव्यस्त संस्कृति का हिस्सा हूं। आप जानते हैं, केवल मेरी देखभाल करके हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम लोगों को भी नहीं बदल सकते, मैं शायद फिर से गंदगी में फंस जाऊंगा। यह बहुत बड़ी समस्या है। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह एक राष्ट्रीय समस्या है। क्या अधिकांश भविष्यवक्ताओं ने इसी मार्ग का नेतृत्व नहीं किया? मेरा मतलब है, यह सिर्फ यशाया ही ऐसा महसूस नहीं कर रहा था। उन सभी ने पहचान की।
हाँ,
पैगंबरों ने, एक संघ के रूप में हिब्रू पैगंबरों ने अपने लोगों के साथ पहचान बनाई। उन्होंने ईश्वर से तादात्म्य स्थापित किया और लोगों से तादात्म्य स्थापित किया। हम अध्याय 59 तक पहुंचते हैं, जो पूरी बाइबल के सबसे काले अध्यायों में से एक है, जहां यशायाह लोगों के लिए बोलता है, यह स्वीकार करते हुए कि वे कितने गहरे पापी हैं। यहां कोई रोशनी नहीं है, यहां कोई न्याय नहीं है। यदि कोई बुराई से विमुख हो जाता है तो वह शिकार बन जाता है। और यह यशायाह इसके कई वर्षों बाद बोल रहा है, लेकिन लोगों के लिए बोल रहा है। हाँ, हाँ। और फिर मैंने राजा को देखा है, मैंने सेनाओं के यहोवा को देखा है, और इसका मतलब है कि मैंने खुद को देखा है। तो इस बिंदु तक यशायाह के पास मानवीय अक्षमता का एक दर्शन था। जिस वर्ष राजा उज्जियाह की मृत्यु हुई, मैंने प्रभु को देखा। उसे पवित्र ईश्वर का दर्शन हुआ है और उसे अपने अशुद्ध आत्म का भी दर्शन हुआ है। यह बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अब यह एक ट्रिकी प्रश्न है। वह क्या नहीं मांगता? वह सफाई के लिए नहीं कहता। वह भगवान से यह नहीं कहता कि हे भगवान, कृपया मुझे शुद्ध करें ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। क्यों नहीं? हाँ, मैं निराशाजनक शब्द का प्रयोग करूंगा। मेरा मतलब है, मैं आपकी उपस्थिति में कैसे रह सकता हूं? मैं जो हूं उनके बीच में कैसे रह सकता हूं? यह किसी काम का नहीं, इसमें कोई मतलब नहीं है। मैं अभी गया, मैं टेराजो फर्श पर एक ग्रीस वाले धब्बे की तरह हूं। सब खत्म हो गया। भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान के साथ ऐसा नहीं है। मुझे अपनी स्थिति निराशाजनक लग सकती है। इसके बारे में भगवान से कुछ भी करने के लिए कहने के लायक भी नहीं है। एक आदमी ने कहा कि मैं इतना नीचे हूं कि मुझे कीड़ों को देखने के लिए ऊपर देखना पड़ता है। लेकिन भगवान क्या करता है? पद 6। जलते हुए लोगों में से एक हाथ में जलता हुआ कोयला लेकर, जिसे उसने चिमटे से वेदी से उठाया था, मेरे पास उड़कर आया। अब वह कोयला कितना गर्म है? यदि सेराफ को संभालने के लिए चिमटा रखना पड़े तो यह गर्म है। अब यशायाह के लिए मेरा एक प्रश्न यह है कि जब मैं स्वर्ग पहुंचूंगा और मैं उससे मिलने से थोड़ा डरता हूं, इस डर से कि वह मुझसे कहेगा, तुम्हें यह सब सामान कहां से मिला? मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। यह थोड़ा डराने वाला है, लेकिन फिर भी मेरा एक प्रश्न यह होगा कि कौन सी वेदी? मंदिर में दो वेदियां हैं। पवित्र स्थान में धूप की एक वेदी है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें बताती है कि यह संतों की लगातार बढ़ती प्रार्थनाओं का प्रतीक है। तो यह संभव है। याद रखें, मंदिर सिर्फ इमारत नहीं है, मंदिर ही न्यायालय सहित संपूर्ण चीज है। इसलिए जब वह कहता है कि उसने मंदिर में भगवान को देखा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह पवित्र स्थान पर था। वह हो सकता है, लेकिन मंदिर में एक और वेदी है ना? सामने विशाल ऊंची वेदी। मेरा सिर मुझे बताता है कि यह शायद धूप का कोयला था। मेरा दिल मुझसे कहता है कि यह जलते हुए मेमने के मांस का एक टुकड़ा था। ये आपके होठों को छू गया है। अब आप क्या सोचते हैं यशायाह ने क्या कहा? क्या आपको नहीं लगता कि उसने कहा, ओह, यह बहुत मजेदार है, चलो फिर से करें? मुझे लगता है वह रोया। भगवान, यह जलता है, जलता है। साराप गुलाब की पंखुड़ी लेकर नहीं आया और अपने होठों पर पवित्र जल नहीं छिड़का। वह आग लेकर आया था। अब अग्नि का क्या महत्व है? हमने जलाने के बारे में बात की है, हमने धुएं के बारे में बात की है। यहां यह जलता हुआ कोयला है। अग्नि का क्या महत्व है? शुद्धिकरण, अग्नि मैल को जला देती है। यह आग थी जो जल रही थी, परंतु उस झाड़ी को नहीं जला रही थी जिसे मूसा ने देखा था। यह आग का एक खंभा था जो रात में तंबू के ऊपर उठता था। जलती हुई झाड़ी यह पवित्रता थी। यह परमेश्वर की पवित्रता ही अग्नि थी। हाँ, सिनाई पर वे कहते हैं कि उन्होंने इसे पाया। क्या आपने इसके बारे में सुना है?
हाँ
हाँ, मेरा मतलब है यह आज भी है। यह काला है। उन्होंने कहा कि केवल एक चीज जो ऐसा कर सकती है वह है इस पर पड़ने वाली तीव्र गर्मी। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन मैं बस, यह एक सिद्धांत है। यह एक सिद्धांत है। अग्नि शुद्ध करती है, आग भस्म कर देती है। अग्नि द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आग बेहद आकर्षक है। आग लगाओ और तुम्हें भीड़ मिल जाएगी। आग, क्या यह इस बात का प्रतीक नहीं है कि जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो वह हमारे साथ क्या करता है?
हाँ हाँ हाँ,
हर सिर पर आग की जीभ।
हाँ,
लेकिन फिर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वह भगवान का पुरुष भगवान की महिला बनने का व्यवसाय है। यह केवल तिप्तिया घास के खेत से होकर गुजरने वाली एक छोटी सी यात्रा नहीं है। यीशु ने कहा कि यह एक क्रूस है। जहां तक मुझे पता है मखमली से ढके क्रॉस नहीं है। यह निश्चित रूप से उसके लिए सच था। ठीक है, अब पहली बार पद आठ में वह परमेश्वर की आवाज सुनता है। आपके अनुसार इसका क्या महत्व है? उसने अब से पहले परमेश्वर की आवाज क्यों नहीं सुनी? वह अभी भी पाप में था। उसके कान खुल गए थे और होंठ भी लग गए थे। मुझे लगता है ये सही है। फिर यह अटकले हैं, पाठ नहीं कहता, लेकिन यह बहुत दिलचस्प है कि इस अनुभव के बाद ही वह भगवान की आवाज सुनता है। खैर, क्या वह वहां नहीं जल रहा है जहां वह बदल गया है?
हाँ,
सिर्फ पाप ही नहीं बल्कि उसे भगवान की सेवा करने में सक्षम बनाने के कई अन्य तरीके भी हैं।
हाँ,
अग्नि शुद्ध करती है, अग्नि भी रूपांतरित करती है।
हाँ
हाँ
हाँ,
अब परमेश्वर यशायाह से सीधे बात क्यों नहीं करता? मैं किसे भेजूं? हमारे लिए कौन जाएगा? वह यह क्यों नहीं कहता, यशायाह, मैं तुम्हें पाने के लिए इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। अब आगे बढ़े। भगवान ऐसा क्यों नहीं करता? क्षमा, उसे फुलाओ, इससे उसे रोना आ सकता है।
हाँ
हाँ, भगवान ने मुझसे सीधे बात की, उसे स्वतंत्र इच्छा दी, उसे स्वतंत्र इच्छा दी।
हाँ,
वह प्रतिबद्धता चाहता है। वह वहां अकेला है।
यह है,
क्या आप इसके लायक नहीं हैं?
हाँ
हाँ, सेराफिन कह रहे हैं हम चलेंगे, हम जाएंगे, हम उससे बात करेंगे। क्या वह वहां अकेला नहीं होगा? संभवतः वही एकमात्र व्यक्ति है जो जानता है कि क्या हो रहा है। जीवन में पहली बार उसका भगवान से रिश्ता जुड़ा है और वे संचार में हैं। वह सुनता है। और यह आप जानते हैं, फिर से मैंने यह पहले भी कहा है, ईश्वर सदैव सुसंगत है, लेकिन उसका कभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अन्य भविष्यवक्ताओं ने कहा तुम जाओ। यहेजकेल के साथ भी लगभग यही हुआ। यिर्मयाह ने कहने की कोशिश की, मैं बहुत छोटा हूं और बहुत मूर्ख हूं। और भगवान ने कहा, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ एक बार फिर भगवान एक बक्से में रखे जाने का विरोध करते हैं। प्रत्येक कॉल इसी प्रकार होगी। नहीं, कॉल व्यक्तिगत हैं। हालांकि मुझे यह अप्रत्यक्ष रूप पसंद है। मैं किसी दिन असबरी सेमिनरी में इस तरह की गवाही सुनने के लिए उत्सुक हूं। मैं बस सुसमाचार का प्रचार करना चाहता था। मैं बस यही चाहता था कि उपदेश देने के लिए परमेश्वर का आदमी बनूं। और भगवान ने कहा, नहीं, तुम एक दंत चिकित्सक बनोगे। और मैंने कहा, हे भगवान, मैं पूरे दिन लोगों का मुंह देखते रहने वाला ऑर्थोडॉन्टिस्ट नहीं बनना चाहता। भगवान ने कहा, नहीं, तुम दंत चिकित्सक बनोगे। तो मैं एक ऑर्थोडॉन्टिस्ट बनने जा रहा हूं। मुझे इससे नफरत है, लेकिन मैं यह करने जा रहा हूं। आप जानते हो मैं क्या सोच रहा हूं। मैं हमेशा से एक ऑर्थोडॉन्टिस्ट ही बनना चाहता था। और भगवान ने कहा, नहीं, तुम उपदेशक बनोगे। तो ठीक है, मैं यहां हूं। मुझे लगता है मैं एक उपदेशक बनने जा रहा हूं। लेकिन मैं निश्चित रूप से एक ऑर्थोडॉन्टिस्ट बनना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि यशायाह को अनुग्रह का इतना अप्रत्याशित अविश्वसनीय अनुभव हुआ है कि भगवान उसे यह कहने का मौका देना चाहते हैं, भगवान, भगवान, क्या आप किसी तरह मेरा उपयोग नहीं कर सकते? क्या आपके राज्य में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मैं आपकी सेवा कर सकूं? मुझे डर है कि हम में से अधिकांश लोगों का अनुग्रह का अनुभव इसके लिए पर्याप्त गहरा नहीं है। उसने सोचा कि वह एक स्याही का धब्बा है और अब वह जीवित और साफ है। इसलिए मुझे लगता है कि भगवान जानबूझकर इस तरह का काम कर रहे थे। और यशायाह कहता है, मैं यहां हूं, मुझे भेजो। 8 बज गए हैं, आशीर्वाद लेंगे, घर चलें। नहीं, अभी 8 बजे हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में यशायाह 6 पर केवल एक ही उपदेश सुना है जो श्लोक 8 पर आकर रुका नहीं। मैं यहां हूं, मुझे एक मेगा चर्च बनाने के लिए भेजें। मैं यहां हूं, मुझे चीन में हारी हुई सभी चीजें जीतने के लिए भेजो। मैं यहां हूं, मुझे भेजो। भगवान ने कहा, नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम एक संदेश रखो। मैं चाहता हूं कि आप एक संदेश का प्रचार करें। यह इन लोगों की आंखों को अंधा कर देगा, उनके कानों को बहरा कर देगा और उनके दिलों को कठोर कर देगा। ऐसा न हो कि वे फिरें और चंगे हो जाएं। वाह, क्या हम यहां दोहरे पूर्वनियति के बारे में बात कर रहे हैं? भगवान ने निर्धारित किया है कि ये लोग शापित हैं और वे सभी शापित होने वाले हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। दिलचस्प बात यह है कि ये दो छंद यशायाह 6:9 और 10 नए नियम में सबसे अधिक उद्धृत दो पुराने नियम के छंद हैं। यीशु ने इसे उद्धृत किया और शिष्यों ने इसे उद्धृत किया क्योंकि इससे उन्हें अपने अनुभव को समझने में मदद मिलती है। अब हमारा समय जा रहा है, इसलिए मैं बस आगे बढ़ूंगा और सवालों का जवाब दूंगा और आपको जवाब देने का मौका नहीं दूंगा। यहाँ क्या हो रहा है? यदि यशायाह एक नरम आसान संदेश देगा तो उसकी पीढ़ी परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन वाकई में नहीं। जिस पीढ़ी से वह बात कर रहे हैं, यदि वह सत्य का प्रचार करते हैं तो उनका संदेश उन्हें ईश्वर से दूर ले जाएगा। इसलिए नहीं कि ईश्वर चाहता है कि उन्हें और आगे बढ़ाया जाए, बल्कि केवल इसलिए कि उनकी अपनी स्थिति की प्रकृति है। तो यशायाह के पास एक विकल्प है। वह सत्य का उपदेश दे सकता है और उसकी अपनी पीढ़ी परमेश्वर से दूर हो जाएगी, लेकिन दूसरी पीढ़ी सत्य सुनेगी और विश्वास करेगी और वास्तव में परिवर्तित होगी। यदि यशायाह ने एक आसान संदेश दिया होता जिसे उसकी अपनी पीढ़ी से अच्छी प्रतिक्रिया मिली होती, तो आज हम यशायाह का नाम नहीं जानते, उनकी किताब अस्तित्व में नहीं होगी, हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब मुझे इस तरह बात करने का सौभाग्य प्राप्त है, क्योंकि मैं किसी चर्च का पादरी नहीं हूँ। लेकिन मुझे आज उत्तरी अमेरिका में चर्च के लिए गंभीर चिंताएं हैं। मुझे लगता है कि हम एक आसान संदेश का प्रचार कर रहे हैं जो हमारी बड़ी इमारतों को भर रहा है। हमारी छोटी इमारतें नहीं, बल्कि हमारी बड़ी इमारतें हैं। और जब आग जलने लगती है तो मुझे परिणाम की चिंता होती है। शायद मैं बिल्कुल गलत हूँ। ऐसा ही हो, मुझे पूरी ईमानदारी से ऐसी आशा है। और यह मनुष्य का चिन्ह है, पद 11। उसके प्रश्न पर ध्यान दें। नहीं क्यों? या इससे भी बदतर, मैं ही क्यों? कितनी देर? कितनी देर? मुझे बताया गया है कि मरीन में जब ड्रिल प्रशिक्षक कहता है कूदो, तो एकमात्र उचित उत्तर होता है हाँ सर, कितनी देर तक? और परमेश्वर उसे कोई उत्साहवर्धक उत्तर नहीं देता। जब तक नगर उजाड़ न रह जाए और उनमें कोई निवासी न रह जाए, और घर बिना किसी मनुष्य के उजाड़ हो जाए, और भूमि उजाड़ न हो जाए, और यहोवा लोगों को दूर से दूर कर दे, और देश के बीच में बहुत से निर्जन स्थान हो जाएं, और चाहे उसका दसवां भाग भी रह जाए, वह बांझ व बांझ वृक्ष की नाई फिर जल जाएगा, जिसका ठूंठ काटे जाने पर भी बच जाता है। हे भगवान, तब तक प्रचार करो जब तक कि भूमि जले हुए ठूंठों का खेत न बन जाए। पवित्र बीज उसका ठूंठ है। हाँ हाँ, उन जले हुए स्टंपों में से एक को देखो, थोड़ा हरा अंकुर। हाँ यशाया, आपके मंत्रालय का संपूर्ण परिणाम थोड़ा सकारात्मक होने वाला है। यह डीएस की वार्षिक रिपोर्ट में अच्छा नहीं लगता, अखबारों में अच्छा नहीं चलता, लेकिन भगवान का शुक्र है, यशाया ने कहा। हाँ भगवान, हाँ प्रभु, मैं वफादार रहूंगा। और क्योंकि वह वफादार था, हम आज यहाँ हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिताजी, यशाया के लिए धन्यवाद। एक आदमी जो आपकी सेवा करना चाहता है, चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, और अस्वीकृति, घृणा और हंसी के बीच में कौन आप पर अपना विश्वास बनाए रखने में सक्षम था, और आपके प्रति इतना चौकस रहना कि वह आपके कहे हर शब्द को सुन सके। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद यशाया। हे भगवान, हमारी मदद करो, मेरी सहायता करो, मुझे आपकी कृपा को इतनी गहराई से महसूस करने में मदद करें। करने योग्य एकमात्र कार्य यह है कि मैं अपना जीवन आपकी सेवा में लगा दूं। हे प्रभु, यह हम सभी के लिए सत्य हो। अपनी कृपा से हमें बपतिस्मा दें, और हमें अपनी कृपा से बपतिस्मा दो। आप हमें जहां भी रखें, आनंदमय सेवा के लिए हमें सक्षम करें। आपके नाम पर आमीन। यह यशायाह की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट हैं। यह सत्र संख्या 4, यशायाह अध्याय 6 है। आप